मानव ने शैतानी हंसी हंसी, मतलब कोई पुरुष चाहिए जिसके साथ उसका नाम जोड़ दिया जाए और फिर बस तस्वीरें, बातें और सबके सामने उसकी पोल। कामिनी ने हाथ थपथपाते हुए कहा, सही कहा, लेकिन वो आदमी कौन होगा? मानव ने तुरंत कहा, इस शहर में कमी नहीं है, मैं किसी को पैसे देकर ये काम करवा सकता हूँ। जरूरी तो ये है कि खेल इतना पक्का हो कि कोई सफाई भी काम ना आए। मोनी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। और जब विक्रम को लगेगा कि रैना का कोई और है तो वो खुद उससे नफरत करेगा। फिर चाहे वो यहाँ रहे या जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी जगह तो पक्की हो जाएगी। कामिनी ने अपनी बेटी का चेहरा थाम कर कहा, तुम चिंता मत करो, ये घर, ये बंगला, ये दौलत सब तुम्हारा होगा। बस हमें धैर्य रखना होगा। रैना जितनी देर यहाँ रहेगी उतना ही वो हमारे जाल में फंसती जाएगी। मानव ने गहरी सांस ली और दीवार पर टेक लगाकर कहा, तो तय रहा, कल से ही मैं इंतजाम शुरू करता हूँ। अब की बार ये रैना बचकर नहीं जा पाएगी। कमरे में सन्नाटा लौट आया, मगर इस सन्नाटे में षड्यंत्र की गंध थी। तीनों के चेहरों पर संतोष की छाया थी, जैसे वे पहले ही जीत चुके हों। मोनी ने आंखें मूंद कर बस एक ही नाम दोहराया, विक्रम। अब वो सिर्फ मेरा होगा। कमरे में षड्यंत्र की परतें अभी गहरी ही हो रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मानव ने चिढ़कर आवाज लगाई, कौन है? दरवाजा खोलते ही नौकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, साहब ने डिनर के लिए बुलाया है, टेबल तैयार है। मोनी ने भौंें तिरछी की, मानो उसके प्लान पर पानी फिर गया हो। कामिनी ने धीमी सांस छोड़ी और बोली, ठीक है, हम आ रहे हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा, चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि बाहर चाहे जितनी भी मुस्कान दिखानी पड़े, मगर मन में चल रहे खेल को कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे वे कमरे से बाहर निकले और डाइनिंग हॉल की ओर बढ़े। लकड़ी की फर्श पर उनकी पदचाप गूंज रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला, टेबल का दृश्य सामने आया। बड़े डाइनिंग टेबल पर सफेद मेजपोश बिछा था। प्लेटों और चांदी के चमचों की चमक से सब रोशन लग रहा था। ताजे फलों की टोकरी और गर्मा गर्म खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। और वहीं टेबल के बीचों बीच राजेश जी बैठे थे, व्हीलचेयर के सहारे। उनके ठीक पास रैना बैठी थी, साधारण सी सलवार में, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में सुकून। उसके बगल में विक्रम था, जो आराम से बैठा चुपचाप खाने की तैयारी कर रहा था। मोनी का दिल धड़क उठा। उसकी आंखें सीधे विक्रम पर टिक गईं, जो उसकी जगह रैना के इतने करीब बैठा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं, मगर चेहरा जबरन शांत बनाए रखा। राजेश जी ने जैसे ही उन्हें देखा, हल्की मुस्कान दी, आओ बैठो, साथ में डिनर करेंगे। कामिनी ने औपचारिक सी मुस्कान ओढ़ी और कहा, जी हम आ ही रहे थे। तीनों ने जाकर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। रैना की आंखें नीचे झुकी थीं, लेकिन विक्रम की नजर बार बार उसकी ओर उठ रही थी, जैसे उसे आश्वस्त कर रहा हो कि वो अकेली नहीं है। मोनी ने ये सब देखा और भीतर ही भीतर जल उठी। उसने प्लेट में खाना परोसा, लेकिन चमचे इतनी जोर से टकराया कि आवाज सबके कानों तक पहुंची। विक्रम ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर शांत भाव से नजरें फेर ली। राजेश जी ने धीरे से कहा, रैना बेटा, तुमने कुछ और क्यों नहीं लिया? खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। रैना ने मुस्कुराने की कोशिश की, जी पापा। उसकी ये सादगी और पिताजी का स्नेह दोनों ही मोनी और कामिनी के लिए किसी तीर से कम नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता शुरू तो हुआ, लेकिन हर निवाले के साथ नजरें टकराती, ताने छिपते और मन में चल रही जंग और भी गहरी होती गई।